ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ ਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਸੈਮਸੰਗ S23 ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ, 3 ਸਮਾਰਟ ਟੈਬਲੇਟਸ, 5 ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ, 5 ਏਅਰ ਫ੍ਰਾਇਰਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ। ਵਿਜ਼ਿਟ 1850 ਐਲਬਿਨ ਰੋਡ ਟੋਬੀਕੋ ਔਰ ਕਾਲ ਐਟ 416-213-1165। ਸਮੋਸਾ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰ ਸਕੋ। ontario.ca/builds ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ $400 ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ $350,
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਰਫ $100,
ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਸੇਵ ਕੀਏ ਹੈ $1,775।
ਕਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਆ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾਓ ਨਾ।
ਭਾਈ ਬਾਤ ਸਾਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਗਾੜੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ ਸਭ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਾ ਕਰ ਮੈਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕੀਆ ਹੈ ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਔਰ ਘਰ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੇ ਖੂਬ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ। ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਪਾਸ਼ਾ, 647-290-3773।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। cibc.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एम्बिशंस मेड रियल।
और कोई ना रेडी कीती ना के पूरा टाइम स्वीट महल दी जाऊं मठाई टेस्ट जिना दा कैम खाले मिट्टी ए हाय छड़ के तारे बैम।
स्वीट महल ते इस दिवाली लग रहा है मठियाइयां दा मेला। थोड़ा खाओ जी पर खाओ बढ़िया। स्वीट महल तो लाओ ड्राई फ्रूट, देसी घ्यो दियां बनियां जलेबियां, स्वीट महल स्पेशल डेकोरेटेड डब्बे। पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवर्ड और कॉल 416-679-9191। सेलिब्रेट दिवाली विद स्वीट महल।
एक अजिही जगह जिथे बहुत कुछ हो रहा है, एक जगह चौधरी खाना नू दखन दे निर्माण समर्थन नाल जोड़ के इसी अर्थव्यवस्था नू पुनर्निर्मित कर रही है। एक जगह जिस विच कैनेडा दे पहले इलेक्ट्रिक वाहन अते बैटरी दे प्लांटा विच $44 अरब तो वादा निवेश होया है, जिथे अज दी तारीख विच वधेरे लोग काम कर रहे हन अते ज्यादा कमाई कर रहे हन। एक जगह ओंटारियो है। ontario.ca/rebuildingoureconomy ते वधेरे जानो। ओंटारियो सरकार द्वारा भुगतान शुदा।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
कि कनाडा जिसको हम जानते हैं इन दिनों पीछे की तरफ जा रहा है। ट्रूडो और NDP लिबरल्स के 9 सालों के बाद अखराजात बढ़ गए हैं, सड़कें खतरनाक और गैर महफूज हैं और लोग गुर्बत में जी रहे हैं, लेकिन हम चीजों को दोबारा बेहतर बनाने के लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन सेंस लीडर कंजर्वेटिव पे पॉलिट के पास एक मंसूबा है जिसका मतलब होगा कि सख्त मेहनत करके एक भारी आमदनी हासिल की जा सके, सस्ती खुराक और मकान खरीदा जा सके और महफूज मोहल्लों में जिंदगी गुजार सके उस मुल्क में जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं। आइए मिलकर एक बेहतर कनाडा बनाएं। ये पैगाम पे पॉलिट और कॉमन सेंस कंजर्वेटिव के तआवुन से पेश किया गया।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾ ਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
Mohammed Sheikh and Shiraz Hussain in association with The Legal Connection and Watan Kebab proudly present Sajjad Ali performing on October 26th at the Meeting House, Oakville.
Hey, Cinderella.
Tickets available on Eventbrite, powered by Big Bickering. For sponsorship and VVIP tickets, contact Moshek Shiraz Hussain.
Chandni
Banquet Hall.
Intelligent choice, locations, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888. 905-458-8888. Or visit chandnivictoria.ca.
Chandni.
शिराज शफीक जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000 लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड
खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप तल्लुक आते हैं इनके आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त दिया जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1000 महीना कैसे बचा सकते हैं कॉल हैरी सॉन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
जबरदस्त उमरा पैकेज के लिए एक ही नाम अल हबीब ट्रैवल साल 2024 के उमरा पैकेजेस वो भी खुसूसी डिस्काउंट प्राइस और आला मियार की सहूलियत के साथ परफॉर्म उमरा फ्रॉम 90th नवंबर टू 30th नवंबर 2024 क्वाड 3299 ट्रिपल 3499 डबल 3799 पैकेज इंक्लूड्स ट्रैवल मक्का टू मदीना बाय ट्रेन स्विस अल मकाम होटल इन मक्का अल अकीक होटल इन मदीना फुल ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन जियारत मक्का एंड मदीना अल हबीब ट्रैवल 905-554-7786 905-554-7786 अल हबीब ट्रैवल
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ ਥ੍ਰੀ ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਸ਼ਾਰਪ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ 801 Bovet Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828 905-450-2828
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे बहुत मुबारक हो पाकिस्तान में 25 तारीख से पहले बस जी अत पड़ी हुई थी अत खुदा दा वैर कि 26वीं आईनी तरमीम हो जाए हो गई जी हो गई आप सोचिएगा कि मरने वाला मर जाए रात के वक्त रात के 11 बजे तक سینیٹرز نے اس کو تمام اپر ہاؤس نے ایکسپٹ کیا. اس کے بعد پھر رات 10 بجے کے بعد اجلاس شروع ہوا ہمارا قومی اسمبلی کا, اور صبح اناؤنس ہوا کہ جی قومی اسمبلی نے بھی منظور کر لی, اور اس کے بعد پھر اللہ آپ کا بھلا کرے پریزیڈنٹ بھی سائن کر دیا, یعنی 25 سے پہلے پہلے ہونا تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو ان کی اپوائنٹمنٹ سے 87 ڈیز بیفور ہز اپوائنٹمنٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا. اور نوٹیفیکیشن کیا تھا؟ نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے. 87 پرائر ٹو ہز یو نو جو انہوں نے اوتھ لیا تھا. بٹ انفارچونیٹلی 25 تاریخ کو ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, مگر تاحال ابھی تک نہیں پتا کہ پاکستان کی قسمت اگلے چیف جسٹس کون ہوں گے. اینڈ اس ملک کا المیہ یہی رہا کہ جب سے پاکستان بنا عدلیہ نے جو اپنا رول پلے کیا. آج اٹس ویری سیڈ, اٹس ویری 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 سیڈ. یقیناً جناب آ رہے ہیں کرامت اللہ غوری صاحب آ رہے ہیں, وہ اس کے بارے میں تفصیل میں بات کریں گے کہ آئینی ترمیم جو کر لی گئی الٹیمیٹلی. اور بلکہ آج ایک بڑا علی کوٹ صاحب ہمارے ایک لائر ہیں, ان سے ہم نے آپ کی بات بھی کروانی ہے, تاکہ میرے خیال 4:25 پہ ہم ان کی طرف آپ کو لے کر کے چلیں گے. یہ احمد جو علی کوٹ ہیں, یہ جناب پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ انہوں نے کام کیا تھا. ان کو ہاؤس اریسٹ میں بھی رکھا گیا, ان کو بہت بار پرزن میں بھی رکھا گیا, اور لائرز کو ایک جگہ جمع کرنے میں انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. علی کوٹ صاحب سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے, بات چیت کرائیں گے کہ اگلا لایا عمل کیا ہوگا. بہرحال آئینی ترمیم تو اب ہو گئی, مگر اس کا جواب علی کوٹ کیا دیتے ہیں وہ سننے والا جواب ہوگا, اور یقیناً اس کی طرف ہم لے کر کے چلیں گے آپ کو. آج اس خبر کو جیسے ہائی لائٹ کیا گیا, یقینا اس کی ڈیٹیل کے لیے تو جناب کرامت اللہ غوری صاحب 3:30 ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. کالے سانپ کے دانت, ڈگی میں بند پرندے, اور مین آف دا میچ مولانا ہمارے فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ طرح میم لکھی, کچھ پیپلز پارٹی کی طرف سے آئیں, مگر جو ادروائز نیوز یہی ہے کہ یہ تمام کی تمام طرح میم کہیں اور سے لکھ کے آئی گئیں. بہرحال یہی ہماری بدقسمتی ہے, حالانکہ وہ جو کہیں اور ہے وہ ہمارے ملک کا سب سے بہترین ادارہ انٹرنیشنلی کے جانا جاتا ہے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا گوشت حرام کیا, ٹھیک ہے نا, آپ انسان کا گوشت نہیں کھا سکتے, بٹ اگر آپ کو موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ انسان کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے. اور کہتے ہیں یہ گوشت اتنا مزیدار ہے, اتنا مزیدار ہے انسان کا گوشت کہ میں کیا بتاؤں. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر انسان کے گوشت کھانے کی عادت پڑ گئی تو پھر لوگوں نے بکریاں مرغیاں اور اللہ پرلی چیزیں کھانی نہیں, صرف انسان کا گوشت ہی کھانا. تو صاحب یہی صورتحال اس وقت اقتدار کے حوالے سے بھی ہے. آج ایک نیا لفظ مجھے سننے کو ملا, اور وہ بھی جب مقتدر لوگوں سے میں بات کر رہی تھی, انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جس میں سہولت کار کا ایک لفظ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے. اور یہ سہولت کار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو ٹیررسٹ گردانا جاتا ہے, یعنی یہ لوگ وہ جو کسی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کھیلنے کے باعث وہ بعض اوقات اپنی ذاتی املاک کو, اپنے ذاتی لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. اور اس وقت ہمارے پولیٹیشین ایک سہولت کار کا رول پلے کر رہے ہیں. بہرحال نیوز کچھ اس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا نے کور کی کہ مہینوں سے جاری بحث مباحث سے اتحادی پارٹیوں کے ناراض ہونے اور پھر مان جانے آدھ درجن کے نزدیک مجوزہ ترامیم کے مسودوں پر گفتگو کے بعد کانٹ چھانٹ, چند سیاسی جماعتوں کی جانب سے اراکین پارلیمان کو اس ترامیم کے حق میں ووٹ لینے کے لیے ہراساں کیے جانے کے دعووں کے بعد بالآخر آج منڈے پاکستان میں صبح ہماری جو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اس ترامیم کو منظور کرنے کے بعد ہی ختم ہوا, اور اس کے بعد ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی اس کا سائن کر دیے. اب ٹوٹل سینٹ میں اگر دیکھتے ہیں تو سینٹ میں ان کو ڈر تھا کہ سینٹ میں ان کو ووٹ نہیں ملیں گے, مگر ٹوٹل 65 ووٹ پڑے. اگین بہت سے لوگ دو چار چیزیں, ایک تو شاید ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں وی لاگز کے کہ ہمیں کہیں بھی بات چیت کرنا اچھا نہیں لگتا, ठीक, मगर दिस इज व्हाट वी आर. मैं इस वक्त जो न्यूज कवर कर रही हूँ इंटरनेशनल मीडिया से ही कवर कर रही हूँ. सेनेट में इनका ख्याल था कि इनके वोट पूरे नहीं हो रहे, मगर अल्टीमेटली 65 वोट पड़े, जिसमें से 23 वोट पीपल्स पार्टी के थे, 19 वोट नून लीग की जानिब से थे, 5 JUIF मौलाना फजलुर रहमान की जमात, 4 बलूचिस्तान अवामी पार्टी, 3 MQM, 3 ANP, 2 BNP, 4 आजाद सेनेटर्स, जबकि एक जो एक एक वोट काफली और नेशनल पार्टी से मिला. यहां पर एक और अंदर की जो खबर मिली है कि जो आपको पता ही है कि अवामी नेशनल पार्टी है, ANP अवामी नेशनल पार्टी जो है, ये जनाब उनकी है जो हमारे बलूचिस्तान के जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, बट ही इज ऑल्सो इन पाकिस्तान एट द मोमेंट. कहते हैं कि उनकी दो पार्टी के जो राकीन थे उनको एबडक्ट कर लिया गया था, अगवा कर लिया गया था, और उसके बाद उनका कोई पता नहीं मिल रहा था. तमाम के तमाम लोग जो दाखिल हुए वो असेंबली के फ्रंट जोर से दाखिल हुए. ये दो जो ANP के मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनको पीछे के दरवाजे से दाखिल नहीं हुए, इनको पीछे के दरवाजे से लाया गया, एंड दे वर अंडर प्रेशर. जाहिर है बाकायदा मंडी लगी होगी, बिके होंगे वोट, दैट्स ऑल व्हाट इट इज. अब वो कहते हैं कि जब मैं इस खबर को कवर कर रही हूं तो यहां पे मैं ये कहती हूं, एक मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के एक मेंबर पार्लियामेंट हैं जिन्होंने इस तरमीमी बिल पे वोट नहीं दिया, ठीक है, मुस्लिम लीग नून के. अब उनको कहा जा रहा है ये वो मुनहरफ थे, क्योंकि हालांकि वो मुस्लिम लीग नून के से थे, मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि वोट डालें, मगर उन्होंने ये आदिल बाजाई इनका नाम है, उन्होंने वोट नहीं डाला. अब जनाब हमारे जो जनाब मुस्लिम लीग नून के सदर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एप्लीकेशन दी है. सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाजाई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली के को इरसाल कर दिया, और कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिख दिया जिसपे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन असम्बली आदिल बाजाई को नाअहल करार देकर नशिस्त को खाली करार करने का, यानी उसने पार्टी के कवानीन को वायलेट किया. वेयर एज दे से वेरी प्राउडली के दो चार मेंबर PTI के जिन्हों जो आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने इस बिल के लिए इन तरामीम की मंजूरी के लिए वोट दिया, और एक एक जो मेंबर टोटल 6 कम पड़ रहे थे इनके, एक एक मेंबर वो था जो मुस्लिम लीग काफ से एक का ताल्लुक था, एक का ताल्लुक नेशनल पार्टी से था. अब आप सोचिएगा कि इनको नाअहल करार दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, अगर इनको नाअहल करार देते हैं तो 6 वोट भी जाया हो जाएंगे. वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क नहीं है, हमारे लीडर्स हैं, हमारी पार्टीज हैं, दैट्स ऑल व्हाट इट इज. और बाज़ औक़ात हम जब किसी को बेवकूफ बना रहे होते हैं तो हमसे कहते हैं यार देखे बेवकूफ बना के आया गया ना, करते हैं ना ये, तो बस यही कुछ ही कर रहे हैं, इस मुल्क में यही कुछ ही होता रहेगा. यहां पर एक बयान की तरफ लेके जाना चाहती हूं. फैसल वावडा साहब जो हैं उनसे जब बात की गई तो उसके बारे में कहते हैं जब ये तरामीम सेनेट से मंजूर हुई तो सेनेट के बाहर मीडिया के बहुत सारे नुमाइंदे मौजूद थे. सेनेटर फैसल वावडा उनसे जब सवाल किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम का कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो जाएगा, अब देखिए जवाब सुनिएगा. यानी एक जमाना था कि गवाहियां ढूंढना पड़ती थी या किसी बात को प्रूव करना पड़ता था, और आज चीजें प्रूव्ड आपको नजर भी आ रही हैं, मगर हम अपनी आंखें बंद करके आगे की तरफ चल रहे हैं. फैसल वावडा ने जवाब दिया कि भाई अभी तो डिग्गी खोले बगैर ही काम हो गया, अभी तो डिग्गी में इतने सारे परिंदे हैं, उन परिंदों को भी आजाद करना है. इस बिल को सेनेट में पास करवाने के लिए हुकूमती इत्तेहाद को तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को वोट की जरूरत नहीं पड़ी, और बजायर फैसल वावडा का इशारा भी उसी की जानिब था कि जाहिर है जिनको कुट लगाएंगे वो वोट डालेंगे ही डालेंगे. बहरहाल कहते हैं कि मुस्लिम लीग नू जो PTI है उसने वॉकआउट किया. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 और मुस्लिम लीग काफ के एक एक रुकन ने मकतूबा हासिल करने के लिए इन्होंने फ्लोर को क्रॉस किया और अपने वोट के जरिए मदद भी दी. اور زین قریشی, جناب آپ کو پتا ہے قریشی صاحب کی بیٹی سمیت دیگر پی ٹی آئی ممبران نے سوشل میڈیا کا رخ کیا اور اس کی تردید کی. پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اور مولانا فضل الرحمان نے یہاں سے پلی کی لی ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کا حق بنتا تھا کہ وہ واک آؤٹ کرتے, پر مولانا صاحب یقیناً سہولت کار بنے. انہوں نے کالے سانپ کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر ہم نے اس کالے سانپ کے دانت توڑ دیے, اس کا زہر نکال دیا. اس پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی, اب یہ کالا سانپ کون سا ہے آئی ڈونٹ نو, آپ اگر جان سکتے ہیں, مولانا صاحب نے اس کالے سانپ کی وضاحت نہیں کی. بہرحال پیپلز پارٹی کے دور میں, آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی جب آئینی ترامیم ہوئی تھی تو زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور یہ معاملہ ہو گیا. ڈیٹیل میں اس کے بارے میں جو بات کریں گے وہ جناب ابھی کسی لمحے بھی جناب ہمارے ساتھ ہوں گے, کرامت اللہ غوری صاحب وہی بات کریں گے. ہم اپنے اسپانسرز کا ذکر کریں گے. میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں, اب سے تھوڑی دیر کے بعد جناب کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. آج پاکستان کی یہی سب سے امپورٹنٹ خبر تھی, پچھلے 6 مہینوں سے مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ کسی طرح سے یہ آئینی ترامیم منظور ہو جائیں 25 اکتوبر سے پہلے, کیونکہ 25 اکتوبر کو آپ کے ریزائن ہونا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے, اور عمر 65 ریٹائرمنٹ کی ایج ہے جو کہ خیال کیا جاتا ہے کہ 68 ہو جائے گی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہمیشہ یہی کہا کہ مجھے ایکسٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر اگر ساروں کی عمر بڑھے گی تو میری بھی عمر بڑھ جائے گی, یعنی بہتی گنگا میں اگر سب ہاتھ دھوئیں گے تو میں بھی ہاتھ دھو لوں گا. تو لیٹ سی ہاؤ تھنگس ورک. 4 بجے ہمارے خاص مہمان ہوں گے اسکاٹ ڈیوی, ڈیوی ریئلٹی سے جناب اسکاٹ ڈیوی ہمارے مہمان ہوں گے. برمپٹن میں وینسڈے کو ایک میلہ لگنے جا رہا ہے, اور یہ میلہ لگنے جا رہا ہے کہاں پہ, کوئن سٹریٹ اینڈ ہور انٹیریو, یعنی رائٹ ان دا ہارٹ آف برمپٹن ڈاؤن ٹاؤن میں. اگر آپ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور یقیناً خیال بھی کیا جاتا ہے کہ 0.5 انٹرسٹ ریٹ اور کم ہوں گے, یہاں پر آپ کو یہ مارگیج بھی دے رہے ہیں. اگر آپ اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو برسٹل پلیس ان برمپٹن, دی ٹالسٹ بلڈنگ ان برمپٹن. اسکاٹ ڈیوی میرے ساتھ شامل ہوں گے تقریباً 4:05 یا 6 منٹ پہ, تھوڑی سی بات چیت کریں گے. سولمار کا پروجیکٹ ہے, سولمار از اے ویری اسٹرانگ بلڈر. یہاں سے میں آپ کو آگے لے کے آؤں, پھر آج ہمارے ساتھ علی کرد صاحب بھی شامل ہوں گے, آئی بلیو سو 4:25 پہ کرد صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. یہ وہ ہیں جو سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے, بلوچستان بار ایسوسی ایشن کو بھی انہوں نے ریپرزینٹ کیا. پاکستان میں جب 2 یا 3 بار وکلا ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے, دوز پروٹیسٹ پر لیڈ بائی جناب علی کرد صاحب, اس وقت انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. نیٹورک ری انسٹیٹس میکنگ ماسکنگ ریکوائرمنٹ, آپ کو بتائیے کووڈ ختم ہو گیا مگر ماسک ابھی بھی لگانا بہت ضروری ہے. ہمارے ٹورنٹو کا ایک ہاسپٹل ہے جو ماسک لگانے کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بارے میں نئی گائیڈ لائنز انہوں نے دی ہیں.
کینسر سینٹر اینڈ بہت سارے جو ہیں وہ سب مل کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو ہے پورے نیٹورک میں کہ اس کو جو ہے
فوری طور پہ الاؤ کیا جائے کہ وہاں پر ماسک پہننا ضروری ہے.
بہت شکریہ, یہ بھی بات ہوگی. ایک اور چیز ہے برینٹفورڈ نے, دیکھیے صاحب کوکین اور ڈرگز یہاں پہ کمی ہونے کا نام نہیں لے رہے. برینٹفورڈ پولیس نے 6 کلوگرام کوکین اور تقریباً $2 million کیش, آپ سوچے پورا کا پورا کمرہ بھرا ہوگا ہے نا, 2 million کیش کافی سارا ہی ہوتا ہے. 10^6 اب مجھے پتا چل گیا, 2 × 10^6 از 2 million. یس ناؤ آئی نو 2 × 10^6 از ملین, 2 million کیش ملا ہے, 6 کلوگرام کوکین ملی ہے. آنٹیریو میں آف کورس آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کینسر کے بارے میں یہ ہم بہت عرصے سے کہتے چلے جا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ کینسر کا شکار ہوں گے. دس از آر لائف اسٹائل, دس از فوڈ واٹ وی ایٹ, دیٹس آل کانٹریبیوٹ ٹوورڈ دیز تھنگ. انہیریٹنس کا کتنا رول ہے ابھی کوئی سائنس نے اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں کہا, بٹ یس اٹ ڈیفینیٹلی کاؤنٹس. डिस्काउंट्स में फिर लाइफस्टाइल बड़ा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है हमारा लाइफस्टाइल, और फिर जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट। पहली जो कैंसर के इलाज के लिए टुवर्ड्स द एंड ये वो है कि जिसमें मरीज को दर्दों से बचाने के लिए पैलिएटिव केयर में रखा जाता है, नॉर्मली हॉस्पिटल्स में रखा जाता है, मगर हॉस्पिटल्स में क्योंकि कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में जगह कम होने की वजह से बाज़ औक़ात पैलिएटिव केयर घरों पर दी जाती है, जिसमें बाकायदा जो कैंसर पेशेंट है अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जब अपने घर पे गुजारता है तो उसको बेड फराहम किया जाता है, उसको दवाई फराहम की जाती है, नर्स बाकायदा घर पे आती है। आज हमारे ऑन्टेरियो की जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अनएक्सेप्टेबल है कि जो कैंसर के पेशेंट हैं पैलिएटिव केयर के उनकी होम केयर जो है उसकी सप्लाईज नामुकम्मल होने की वजह से, यानी दवाइयां बैंडेज या कोई भी जो चीज रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरी नहीं होती तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये थी चंद एक सूरत हाल।
रायपुर की पुलिस ने जो चार्ज किया आरफा जी आपने जो बताया $2 मिलियन कैश और इसके साथ साथ बहुत सारा 6 किलोग्राम ऑफ कोकेन, तो उनमें जो चार्ज किया है भवनदीप गिल 36 ईयर्स ओल्ड, विक्रम कुमार 23 ईयर्स ओल्ड एंड संदीप कौर 24 ईयर्स ओल्ड इन पोजेशन ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस फॉर पर्पस ऑफ ट्रैफिकिंग।
लो भाईजान संदीप भाजी तानू की होया सारिया ने मत्थे ते काला कुला आती तुसी। संदीप कौर जी तुसी भी कमाल कीता तुसी, छट परे कोई चज दा काम कर लेना सी।
$2 मिलियन थे वो लोगों के लिए काम आते ना। मगर
एक और जड़ी जड़ी चंगी अच्छी न्यूज है वो आपके साथ शेयर करती चलूं, टोरंटो की एक और, वो लोग जो घर खरीदना चाहते हैं, एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक ऑफ कनाडा अभी इंटरेस्ट रेट बड़ी तेजी से गिराएगा। लो कर लो बात, दो चीजें आप कंट्रोल कर लो, माजी जमाल अपनी चीजें कंट्रोल करते हैं, मैं कहती हूँ एक टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड स्ट्रिक्ट हो जाए तमाम रियल स्टेट एजेंट्स के ऊपर। गो बाय द बुक्स, डू नॉट अंडर प्राइस एनी प्रॉपर्टी, बिकॉज हर दौर का आप 15 दिन का कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस बना लें, उस एनालिसिस पे डिपेंड करते हुए आप अपने घर को प्राइस करने के बाद या कंपैरेटिव मार्केट बनाने के बाद लिस्ट करें। ये कंपलसरी कर दें टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड, आई गारंटी कि आपको उसमें भी फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस करती हूं एक घर का अपने उस 3 किलोमीटर के एरिए में और उस घर की कीमत जिसको मैंने बेचने के लिए लगाना है से 8 लाख निकलती है, हो सकता है बाय द टाइम वो मेरा घर बिके इंटरेस्ट रेट और कम चले जाए 8 का 8.5 पौने 9 का भी बिक सकता है, डिपेंड करता है किसके पास कितना पैसा है, कितने की कोई मॉर्गेज कराना चाहता है। देर अगर बिडिंग होती है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, मगर वो जहां पर इंटेंशली रियल स्टेट के एजेंट्स जो है मार्केट की प्राइस कम लगाते हुए उसको लिस्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो बाकायदा लोगों को मोटिवेट करते हैं, 1 ऑफर रजिस्टर्ड, 2 ऑफर रजिस्टर्ड, 3 ऑफर रजिस्टर्ड, 5 ऑफर रजिस्टर्ड, तो जिसे कहते हैं लोगों को उकसा के उस सिमत में ले आते हैं कि भाई हुन मारो खाई दे विचाल। तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब तक देखिए पूरे एक साल में 3 बार इंटरेस्ट रेट कम हुए अब तक, तो विच इज 0.75, और अब अगर 0.5 कम होगा तो इट विल गो डाउन ऑल टुगेदर इस साल में 1.25। मगर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक ऑफ कनाडा गलती कर ली और अब वो बैंक ऑफ कनाडा जो कट्स हैं वो बहुत तेजी से करेगा। मैं क्विकली 2 एक्सपांसर्स का जिक्र करूं क्योंकि आज टाइम उसी हिसाब से लेके चल रहे हैं। काबिल एहतराम जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब तशरीफ फरमा है, तशरीफ ले आए, उनसे बात कराएंगे। बहुत शुक्रिया चोपड़ा ज्वेलर्स के बारे में साहब, अगर आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं और आप दुबई के स्टाइल यानी उनकी प्रेजेंटेशन भी दुबई स्टाइल की है, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में हम सारे के सारे उमरा हज करने जाते हैं हर तरफ पीला सोना लटकता नजर आता है, मगर चोपड़ा ज्वेलर्स पे अगर आप जाएंगे तो नंबर 1 उसकी प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली वो जो दमास और जो बड़े ज्वेलरी स्टोर्स हैं जस्ट लाइक एनीथिंग इन दुबई एंड इन यूनाइटेड अरब इमारात, उनकी तरह से उनकी प्रेजेंटेशन है। ब्यूटिफुल गोर्जियस शोरूम्स स्कॉट से बात कर लेना, दैट इज चोपड़ा ज्वेलर्स 1066 एल्बियन रोड पे। मैं आपको अंदर का भी विजिट करती हूँ, लुक एट दीज शोरूम्स, इट्स ब्यूटिफुल, कलर स्कीम बहुत प्यारी है, कस्टमर सर्विस बहुत प्यारी है, और मजे की बात यह है डायमंड के मैंने कड़े भी देखे, डायमंड के मैंने पेंडेंट्स भी देखे,
यहाँ पे इस बार मुझे डायमंड के पूरे नेकलेसेस नजर आए. वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह रिंग्स एंड एवरीथिंग. चोपड़ा ज्वेलर्स पे आपने तशरीफ लेके जाना, दैट इज इस्लिंगटन एंड एलबीएन के इंटरसेक्शन पे. वी आर ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय मेगा मनी एक्सचेंज. पाकिस्तान रकम भिजवाने के लिए मेगा मनी एक्सचेंज 9052794754. दे आर ओपन टूडे. आई रिक्वेस्ट प्लीज डू विजिट मेगा मनी एक्सचेंज. आप कॉल कर लीजिए शिबाहत एंड मिसेस शिबाहत 9052794754. हमारे यहाँ एक शो होने जा रहा है. दिस इज द लास्ट वीक ऑफ आवर एडवर्टाइजमेंट एंड 24th of October मीटिंग हाउस इन ओकविल में. पाकिस्तान के बेहतरीन एक सिंगर जो हैं वो तो सज्जाद अली कनाडा के टूर पे आ रहे हैं. द फर्स्ट परफॉर्मेंस एट मीटिंग अ हाउस एग्जैक्टली इटोबिको मोटर के मो शेख से आप प्राप्त कर सकते हैं. टिकट्स के लिए आप इवेंट ब्राइट पे जाइए इवेंट ब्राइट. और अगर आपने वी 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 आई पी टिकट लेनी है तो आप मो शेख को कॉल कर लीजिएगा. मो शेख का नंबर मैं दे देती हूँ 8181184 पर रब्ता कर लीजिएगा. दो स्पॉन्सर्स का पैगाम लेती हूँ उसके बाद आई मेक यू मीट विद जनाब करामतुल्लाह गौरी. 4:05 पे आई मेक यू मीट विद स्कॉट डेवी. मैंने अभी आपके साथ शेयर किया एंड डू नॉट बिलीव मी जस्ट गो ऑन आर वेबसाइट चेक दिस न्यूज. एनालिस्ट के मुताबिक बैंक ऑफ कैनेडा अब तेजी से इंटरेस्ट रेट कम करेगा. इन दिस ईयर अबाउट 0.75 जो पॉइंट्स कम हुए हैं. दे आर एक्सपेक्टिंग अनदर 0.5 मोर एंड देन अल्लाह आपका भला करे इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से नीचे जाएंगे. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन ब्रैम्पटन दैट इज ब्रिस्टल प्लेस के स्कॉट डेवी हमारे साथ 4:05 या 10 पे हाजिर होंगे. 4:35 पे आपको मैं नहीं 4:25 पे आपको पाकिस्तान लेके जाऊंगी और पाकिस्तान से हमारे साथ अली कुर्द शामिल होंगे. दिस इज द मैन जिनकी प्रेजेंस में दो बार वकला एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए. वी आर वेरी मच डिवाइडेड एट द मोमेंट एंड अदर फोर्सेज आर रूलिंग. और आईन के साथ जो खिलवाड़ भी हो रहा है लोग अपनी सहूलत के मुताबिक जरूरत के मुताबिक कर रहे हैं. एंड आई बिलीव ताकत का नशा बहुत बड़ा नशा है. चंद स्पॉन्सर्स आई कम बैक विद माई मुअज्जज़ मेहमान के साथ हाजिर होती हूँ जनाब करामतुल्लाह गौरी.
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाही शिनवारी गोट कढ़ाही निहारी हलीम पाए बिरयानी सीख कबाब चिकन टिक्का शवरमा पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस. ओपन माइक कैफे एंड कुजीन वही देसी अंदाज और वही देसी जायका. 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा यूनिट 3. ऑर्डर नाउ कॉल 416-526-6800.
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 4168945872.
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ.
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 4168945872.
और हर ट्यूजडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हों.
अरे खैरियत तो है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहाँ की तैयारी है?
हमारी पूरी फैमिली दूसरे शहर मूव हो रही है. समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये मूविंग होगी.
आप परेशान ना हो, आपकी मूविंग का सिर्फ एक ही हल है 786 मूविंग प्लस.
अच्छा वो कैसे?
786 मूविंग प्लस वाले अपार्टमेंट हाउस ऑफिस स्टोरेज और कमर्शियल मूविंग में स्पेशलाइज करते हैं. मूविंग एंड डिलीवरी पैकिंग एंड अनपैकिंग लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस 24 आवर सर्विस 7 डेज अ वीक आवरली एंड फ्लैट रेट.
आपने तो हमारी मूविंग ही आसान कर दी. फौरन 786 मूविंग प्लस का नंबर दें.
जी जी बिल्कुल 786 प्लस मूविंग के अमीन को आज ही कॉल कीजिए 416-786-6000 416-786-6000.
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं,
और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
फिर से खुश आमदेद कहना चाहती हूँ बेशर इसके कि मैं आगे की तरफ चलूँ। टोरंटो की एक न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट्स ऑल्सो वेरी सैड न्यूज। ग्वाल्फ यूनिवर्सिटी में कल परसों उन्होंने एक लड़के को पकड़ा। ये ब्रैम्पटन्स का रिहायशी है लड़का, उसका नाम अनाउंस नहीं किया, मगर सेक्सुअल असॉल्ट, वहां पे कोई स्टूडेंट थी जिसको उसने सेक्सुअली असॉल्ट किया। ही वॉज नॉट स्टूडेंट ऑफ ग्वाल्फ यूनिवर्सिटी बट स्टिल ही डिड दिस। और मेरा ख्याल है पुलिस के हाथ लंबे हैं, पुलिस ने डेफिनेटली फाइंड कर लेना है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में डिफरेंट कैमराज भी हैं। एंड ऑफकोर्स ब्रैम्पटन से उसका ताल्लुक है। यहां से मैं एक और चीज भी शेयर करना चाहती हूं, कहीं वाटरलू और किचनर की बात है कि एक शख्स अपनी बहुत ही कमाल का लड़का है। ये लड़का सुबह के वक्त अपना वेदर वॉज वेरी नाइस, ही वॉज वॉकिंग ऑन द साइड और एक गोरी लड़की जो थी ना उसने अपने हाथों से अपने जेस्चर से इस लड़के को बहुत बैड लुक दी। बहुत से लोग बड़े जिन्होंने मैंने कहा डर उसके दिल में है जिसने चोरी की होगी, जिसने गलत नहीं किया उसके कोई डर नहीं, कहते हैं कि लड़का फौरन से पहले आगे की तरफ बढ़ा, इसने अपना कैमरा ऑन कर लिया और इसने उस लड़की को जाके कहा डिड आई डू एनीथिंग रॉन्ग, वॉज दिस जेस्चर फॉर मी? उसने कहा यस इट वॉज फॉर यू। उसने कहा व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, इफ आई डिड एनीथिंग रॉन्ग डू लेट मी नो, मैं अपोलोजाइज भी कर सकता हूं। उस लड़की ने इसको और कुछ कहा, उस खातून ने, औरत ने इसको और कुछ कहा या न कहा, उसने इसको कहा कि तुम इंडियंस का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, लीव आर कंट्री। खैर इस लड़के ने ये वीडियो अपलोड कर दी और सोशल मीडिया पर चली गई। वहां से मेन स्ट्रीम के न्यूज टेलीविजन भी वहां तक उस लड़के तक पहुंचे। उस लड़के ने कहा कि यस मैंने अपना कैमरा इसलिए ऑन किया है कि मैं अगर उसको सिर्फ अपने अल्फाज में बयान करता तो शायद लोग ये समझते कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं। मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा था और मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने मुझे इंतहाई दोनों हाथों से बैड जेस्चर्स दिए, तो मैंने उससे पूछा कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है, ये मेरी किसी बात ने उसको ऑफेंड किया है, इज अ कैनेडियन सिटीजन यंग बॉय। तो अब इस वक्त मेन स्ट्रीम जो कम्युनिटी है, ऑफ कोर्स दोज हु आर कैनेडियन, दे आर ऑल विद दिस यंग मैन जो कि इंडियन निजात है। और उसने कहा कि यकीनन इट्स अ मेंटल इलनेस एंड मेंटल इलनेस पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि दिस इज अ मेंटल इलनेस और हमारी गवर्नमेंट को मेंटल इलनेस का खास तौर पे। कैनेडा इज कॉम्बिनेशन ऑफ द कल्चर्स डिफरेंट, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रेनबो ऑफ different countries, cultures, and this is the beauty of Canada. इस लड़के को बहुत पजीराई मिली है, बे इंतहा मेन स्ट्रीम के लोग जो हैं वो इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और कंडेम कर रहे हैं कि जो भी खातून जिसने उसको ये जेस्चर दिए थे वॉज एब्सोल्यूटली रॉन्ग। अब आपकी मुलाकात कराती हूँ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैनेडा। और इस्लाम की बात हम बहुत करते हैं और हम अलमबरदार हैं इस्लाम के लिए, मुझे पता है बहुत से लोग मेरी इन बातों को नापसंद करते हैं। माफ करना हमारे रिलीजन में है, सच बोलना लाजमी तौर पर, सीधी बात करना, बात को घुमा के ना करना, ये कुरान के बीच में भी जिक्र है इन बातों का, मगर हम इन्हीं बातों की वजह से अब पहचाने भी जाते हैं। इट्स अ बैड थिंग बट दीज आर दी ये चीजें, कम तोल और ज्यादा बेच, दैट्स ऑल्सो। हालांकि अगर हम कुरान को फॉलो करते हैं तो तोलना भी हमें बराबर चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के कानून के बारे में जिक्र करना चाहते हैं और हम आज से नहीं बड़े दिनों से ये बात कह रहे थे काजी फायज ईसा साहब की जब अपॉइंटमेंट थी तो उनकी अपॉइंटमेंट से 87 डेज प्रायर टू दैट अनाउंसमेंट हो गई थी कि नेक्स्ट चीफ ऑफ जस्टिस विल बी काजी फायज ईसा साहब। अब 25 तारीख को यानी आज से चौथे दिन काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट है, बट स्टिल यू डोंट नो हु इज गोइंग टू लीड द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। जो इन द क्यू हैं दैट इज जस्टिस मंजूर, मगर 26वीं आईनी तरामीम मंजूर होने के बाद जस्टिस मंसूर जो है उनकी अब कोई भी पोजीशन नहीं रही बिकॉज एज पर दिस 26th अमेंडमेंट के बाद हमारे सियासी कारिंदे जिसको चाहेंगे उसको चीफ जस्टिस नामजद कर देंगे। जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब के पास तजुर्बा भी है और मजे की बात यह इस वक्त जो भी इलीट क्लास पाकिस्तान को लीड करी हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं इन तमाम पॉलिटिशियंस से किसी न किसी तरह से सवाए बिलावल भुट्टो साहब के तमाम पॉलिटिशियन से किसी न किसी तौर पे जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब करीब से मेल मुलाकात बातचीत और उनसे गुफ्तगु का मौका इनको जरूर मिला होगा। करामतुल्लाह गौरी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, अस्सलाम वालेकुम। 26वीं आईनी तरमीम के लिए आप सोचिएगा कि मुल्क में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मगर तमाम के तमाम जो कारिंदे थे वो काम कर रहे थे 26वीं तरमीम की तरफ, यानी दुनिया की पूरी पाकिस्तान के मीडिया को शंघाई कॉन्फ्रेंस का ये कहते हुए कि पता नहीं कौन सा तीर हमने मार लिया उसकी तरफ मबजूल करा के बैक डोर पे तमाम की तमाम तवज्जो थी वो 26th अमेंडमेंट के बारे में थी। अल्टीमेटली मौलाना फजल रहमान साहब को भी राम कर लिया गया और उसके बाद मजे की बात यह वोट डालने के बाद जनाब फजल रहमान साहब ने गौहर बैरिस्टर गौहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली कि भाई पीटीआई ने जो किया सही किया क्योंकि इनके साथ ज्यादती हुई, मगर 26वीं आईनी तरमीम रात के 11 बजे आपके सेनेटर्स उसको मंजूर करते हैं, 4 पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को तोड़ा, 1 मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार को तोड़ा, 1 एएनपी के उम्मीदवार को तोड़ा, वेयर एज उसको फ्लोर क्रॉसिंग का नाम नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग के एक मेंबर पार्लियामेंट ने वोट नहीं डाला, ठीक है वोट नहीं डाला तो उसको इस हुक्म अदूली पे आज हमारे स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने हुक्म जारी किया है कि उनको डीसीट कर दिया जाए, रुकनियत मंसूर, क्योंकि ये मरास्ता जनाब मियां नवाज शरीफ साहब सदर नून मुस्लिम लीग नून ने दिया। आज फौरी तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन भी कर दिए। वकला बड़े बरहम है, आप के सुपुर्द है, आप फरमाइए क्या हुआ।
मैं तो आरफा बीबी कल से गालिब का वो शेर याद कर रहा हूँ, वो दोहरा रहा हूँ। हैरा हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं,
हैरा हूँ
मकदूर हो तो साथ रखूं नौहगर को मैं। गालिब ने ऐसे ही हालात के लिए ये कहा था। देखो जो ड्रामा रचाया गया है वो उससे अंदाजा होता है कि हमारे यहाँ, मैं जो बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान का माशी मसला तो सबको नजर आता है, लेकिन जो सबसे बड़ा और जो सबसे गंभीर जवाल है वो हमारा तहजीबी और अखलाकी जवाल है। इस तरमीम के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, सबसे नुमाया किरदार तो अदा करने वाले वो थे जिनको मसनद अदल का के पर इख्तियार दिया गया था, जो चीफ जस्टिस थे फायज ईसा साहब। उन्होंने ये उस सुप्रीम अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के इब्तदाई फैसले को कि वो लोग जो पार्टी के लीडर के हुक्म के खिलाफ वोट देंगे उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा, फाइज ईसा ने अपने फैसले से उस फैसले को बदला और ये फैसला किया कि अगर पार्टी के लीडर के हुक्म के खिलाफ कोई रुकन असेंबली वोट देता है या रुकन सेनेट वोट देता है तो उसका वोट शुमार किया जाएगा। ये तगोदो इसलिए की गई कि इनके नंबर पूरे नहीं हो रहे थे, दो तिहाई अक्सरियत दोनों ऐवानों में हासिल करने के लिए इनके नंबर पूरे नहीं हो रहे थे। तो पीटीआई के अराकीन को तोड़ना जरूरी था, बलूचिस्तान पार्टी के बाप के अराकीन को तोड़ना जरूरी था, इसी तरह एमकेएम तो इनके साथ थी, इसी तरह ताजा नंबर पूरे करने के लिए ये सारा गठजोड़ किया गया। और वो जो तुमने सुना है ना कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जाता, तो हेरा फेरी करके जितने भी हरबे आजमा सकते थे वो आजमा के इन्होंने ये आईनी तरमीम मंजूर की है। और किसलिए इतनी उजलत से की, तुम बता रही थी कि रात के अंधेरे में सेनेट ने पहले करारदाद मंजूर की, उसके बाद सुबह के 5 बजने से कुछ पहले ऐवान ज़ेरी ने कौमी असेंबली ने ये तरमीम मंजूर की। तो ये सब उजलत किस लिए थी? उजलत इसलिए थी कि फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर को खत्म हो रही है, वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद मुरवजा कवानीन के तहत जो उनके बाद सबसे सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट का मंसूर अली शाह, उनको नया चीफ जस्टिस हो जाना चाहिए था, लेकिन इनको खतरा ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जिसमें ये कहा गया था कि ख्वातीन और अकलियतों की मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ के अराकीन के हवाले कर दी जाएं, उस पर ना आज तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमल किया है ना ही कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने अमल किया है। अयाज सादिक को तो मैं अयाज काजिब कहता हूं इसलिए कि वो उनमें कोई अलामत नहीं है, कोई बात नहीं है सादिक और अमीन होने की। वो भी मुसलसल खत लिखते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ये नशस्तें तहरीक इंसाफ के अराकीन को नहीं दी जा सकती, इनको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अराकीन के दरमियान तकसीम कर दिया जाए। तो ये अदालत का एहतराम है। इनको खतरा ये था कि मंसूर अली शाह, जिनकी साख ये है कि वो न किसी के से मरूब होते हैं न किसी के ताबे फरमान होते हैं, बल्कि वो आईन और कानून की रोशनी में फैसला करते हैं, वो फैसला जो अदल के की रिवायात के करीब तर होना चाहिए। तो इनको खतरा ये था कि मंसूर अली शाह उस मुकदमे को जिंदा कर देंगे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस बात का जवाब तलब करेंगे, बल्कि इनको खतरा ये था कि तौहीन अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घसीट लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब तक क्यों अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये सब कार्रवाई 25 अक्टूबर से पहले करना चाहते थे। और ये जो तरमीम इन्होंने मंजूर की है इसमें अब क्या होगा, इसमें एक 12 रुकनी कमेटी जिसमें कौमी असेंबली और सेनेट के 4-4 अराकीन होंगे
और सुप्रीम काउंसिल के भी होंगे
और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अराकीन भी होंगे और बाकी अराकीन की तादाद का तायुन कौमी असेंबली में मुख्तलिफ पार्टियों की तादाद के हिसाब से किया जाएगा। तो जाहिर है कि इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का पल्ला भारी रहेगा, उनका हाथ ऊपर रहेगा। और मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के अराकीन ने ये हामी भर के कि वो इस 12 रुकनी कमेटी में शरीक होंगे बड़ी गलती की है। अगर उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था तो उनको इस तमाम तमाशे का, इस तमाम कारोबार का फरीक भी बनना नहीं चाहिए था। 12 तो 12 रुकनी कमेटी 3 सीनियर मोस्ट जजों के की फेरिस्त में से अपनी पसंद का चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगी। साफ लगता है कि फैसला कमेटी का मंसूर अली शाह के हक में नहीं जाएगा, इसलिए कि मंसूर अली शाह को ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस देखना ही नहीं चाहते,
दुश्मन, क्योंकि वो ये समझते हैं कानून का
वो कानून का एहतराम करते हैं और इनको ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए जो इनके ताबे फरमान हो, जो कठपुतली हो इनके हाथों में और वो फैसले करे जो ये चाहते हैं। तो ये एक तरह से इंसाफ और कानून का कत्ल हुआ है और कत्ल भी पाकिस्तान के अवाम की नजरों के सामने, पाकिस्तान के जमहूर की नजरों के सामने वो तारीख दोहराई जा रही है जिसकी इब्तिदा आज से 70 बरस पहले 1954 में हुई थी, जब गुलाम मोहम्मद ने, जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली को कलदम करार दिया था और उनके फैसले की तौसीक करने वाले उस वक्त के फेडरल कोर्ट के सरबराह जस्टिस मुनीर थे। तो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख, वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इट हैज कम फुल सर्कल, तो पूरी आज वही पाकिस्तान की अदलिया खड़ी हुई है जहां आज से 70 बरस पहले 1954 में थी। हुकूमत वक्त के ताबे फरमान, और हुकूमत वक्त तो सिर्फ नाम की है, असल तो खेल उस एस्टेब्लिशमेंट का है, उन ताले आजमा जर्नेलों का है जो GHQ में अपनी कमी गाहों में छुपे हुए कौम की तकदीर के फैसले करते रहते हैं। ये इस तरमीम की तफसील में अगर जाओ तो आखिर वक्त तक वजीर कानून को ये नहीं मालूम था कि असल मुसवदा तरमीम का क्या है, इसलिए कि मुसवदा तैयार करने वाले वजीर कानून या वजारत अदल व इंसाफ नहीं थी। ये मुसवदा, ये तरमीम कहीं और तैयार की थी, एस्टेब्लिशमेंट तैयार की थी, ये उनके जहन रसा की पैदावार है, ये उनकी इख्तरा है। और मुझे इस पर फैज अहमद फैज का वो शेर याद आ जाता है कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किस से मुनसफी चाहें। और फैज ने ये भी कहा था, नहीं इकबाल ने कहा था कि सतीजाकार रहा है अजल से ता इमरोज, सतीजाकार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफवी से शरारे बू लहबी। तो ये पाकिस्तान के आईन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, ये जो छेड़छाड़ की गई है, ये जो कानून का कत्ल हुआ है, ये वही दास्तान है जो अजल से चली आ रही है, चरागे मुस्तफवी से शरारे बू लहबी लड़ता रहा है। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हो जाता। आरफा बीवी, मैं इस बात का कायल हूं, मैं कल रात को ही एक अखबार के लिए कॉलम लिख रहा था कि आखिरी फैसला अवाम की अदालत में होना चाहिए। मामला अब अवाम तक पहुंच गया है, इसलिए कि अवाम के हक के इंसाफ और अदल पर डाका डाला गया है, वो अब अवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर देखें तो किस उम्मीद के साथ किस आश के साथ देखें कि वहाँ उनको इंसाफ फराहम हो जाएगा, इसलिए कि वहाँ तो अदलिया की नशस्तों पर, अदलिया की मसनदों पर वो लोग बैठे होंगे जो हुकूमत वक्त के और एस्टेब्लिशमेंट के ताबे फरमान होंगे। तो अभी हाल ही में, अभी 2 महीने पहले बांग्लादेश के गयूर और हुर्रियत पसंद अवाम ने आईना दिखाया है पाकिस्तान के अवाम को, और मैं कहता हूं कि खास तौर पर पाकिस्तान के नौजवानों को, इसलिए कि हमारी नस्ल तो जो कर सकती थी वो कर गुजरी। हमने तो इस मुल्क को, इस कौम को बिगाड़ने में कोई कसर उठा नहीं रखी, लेकिन अब ये मुल्क नौजवान नस्ल का है, उनको ये फैसला करना है, उस नस्ल को ये फैसला करना है, उन नौजवानों को ये फैसला करना है कि वो किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। वो जमहूरी पाकिस्तान चाहते हैं या फस्ताई पाकिस्तान चाहते हैं, जहां इंसाफ और कानून का बोलबाला ना हो बल्कि जंगल का कानून नाफिज हो, जंगल का कानून राइज हो, जिसमें ताकतवर हमेशा अपनी ताकत के बल पर अपनी मनमानी करता रहता है, अपने फैसले मनवाना कर रहता है। तो मैं ये समझता हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम को अपने हुकूक इन इस्तेहसाल पसंदों से वापस लेने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा।
अवाम इतनी बार सड़कों पे निकले, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे 2007 याद आता है, परवेज मुशर्रफ के अगेंस्ट जो चीफ जस्टिस थे उनके, तो इट वाज ओनली लॉयर्स, वकीलों ने उन तमाम फैसलों को वापस लेने पे मजबूर कर दिया था उस वक्त के डिक्टेटर को। क्या वजह है कि इस वक्त आप, इन्होंने ऐसा कमाल की गेम खेली है कि आपकी जो अदलिया है उसके वकला भी डिवाइडेड है,
क्योंकि
अवाम तो सर कुछ नहीं कर सकते।
देखो, बुराई के मुताल्लिक ये कहा जाता है कि बुराई हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। वकला भी तो जाहिर है इसकी कौम के अफराद हैं, वो भी तो उसी जर के चक्कर में फंस गए हैं जिसमें हमारी नाम निहाद अशराफिया फंसी हुई है। हर शख्स को अपना मफाद बरतर लगता है बजाय कौमी मफाद के, हर शख्स अपने मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देता है। और देखो, बांग्लादेश के अवाम ने जिस तरह से 15 साल आमरियत को खत्म किया है, चंद दो ढाई हफ्ते के एहतजाज के बाद वो उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए, और मैं फिर अपने आप को दोहराता हूं कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए ऐसी काबिल तकलीद मिसाल कायम की है जिसको अगर अपनाया नहीं पाकिस्तान के नौजवानों ने, पाकिस्तान की कौम में, तो फिर आने वाली नस्लें न जाने कितने बरसहा बरस
Who cares? पाकिस्तान के जो लोग हुकूमत के या सीट के प्यासे हैं, दे डोंट केयर।
देखो मेरा सर आपसे, बीबी एक बात सुन लो मेरी, कि भूस में पहली चिंगारी डाल दी गई है। ये जो पंजाब में पंजाब के नौजवान तुलबा एहतजाज कर रहे हैं अपनी उस तालिबा के हक में,
सर वो फेक न्यूज है।
नहीं, ये तो कोई कहीं कायम नहीं हुआ कि वो फेक न्यूज है।
नहीं सर, मैं प्लीज उसकी डिटेल ना ही जाने से बेहतर है।
बहरहाल नौजवानों को इनकलाब की कॉल दे दी गई है। अब ये नौजवानों पर मुनहसर है कि वो अपने हुकूक लेने के लिए अपने सर से कफन बांध के सड़कों पे निकलते हैं या नहीं। और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आजादी और जुल्म से निजात कोई आपको बजाते खुद अस खुद तश्तरी में रख के पेश नहीं कर देता, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और हमारी आजादी की जदोजहद की तारीख गवाह है कि हमने لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر اپنی آزادی حاصل کی تھی. اگر وہ قابل تقلید نہیں ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے تو پھر میں کم از کم اپنی ذات کی حد تک اس قوم اس ملک کے مستقبل سے انتہائی مایوس ہوں.
بہت شکریہ جناب کرامۃ اللہ غوری صاحب. میں بہت معافی خواست کروں جو ان کا تجربہ ہے, یقیناً میں ان سے سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. مگر ایک نیوز جس کو میں نے اپنے کسی بھی ہم نے پلیٹ فارم پہ اس کو کور نہیں کیا تھا, اور میں اس میں ذمہ داری محسوس کرتی ہوں. میرے پاکستان کے ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ میں نے اور آپ نے کیسے اپنے کردار کو بچانا ہے, اور ہمارے مردوں کے اوپر آئی ریسپیکٹ مائی آل مین آف مائی کمیونٹی, کہ اگر کہیں اگر ایسی زیادتی ہو تو میرا زندگی کا 64 سال کا تجربہ اور جوانی سے لے کے اب تک 50 ایئرز تو کہیں بھی نہیں گئے, جوانی سے لے کے اب تک